नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंक के आकाओं को दी खुली चेतावनी। कहा, भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करने वाले को करारा जवाब मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा, आम लोगों की परेशानी को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर लैंड कस्टम जल्द चालू किया जाएगा। पटना में कोरोना के संदिग्ध मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राज्य सरकार की लोगों से अपील, घबराएं नहीं। और राज्य में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म मानता है। श्री मोदी ने गुजरात के भुज में जनसभा को संबोधित करते हुए आतंक के आकाओं को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसे करारा जवाब मिलेगा।
हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा।
इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की एक अभिव्यक्ति है।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की मांग यह है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर आवश्यक चीज देश में निर्मित होनी चाहिए।
आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है।
श्री मोदी ने कहा कि स्मार्टफोन से लेकर खिलौने, गाड़ियां और अस्त्र शस्त्र तक आज भारत बना रहा है और दुनिया के देशों को निर्यात भी कर रहा है।
आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है।
श्री मोदी ने दाहोद की जनसभा में ही स्वयं के पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 2014 में करोड़ों भारतीयों के आशीर्वाद से वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान सेवक चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में गठबंधन की राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त कर दिया और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया था। एक रिपोर्ट।
देश की जनता से मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ली।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता का अक्षण रखूंगा।
करोड़ों देशवासियों के सपने, उनकी आशा और आकांक्षाओं की किरण बनकर उभरे श्री मोदी ने अपने मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के साथ साथ विकासोन्मुख पहल के लिए विश्व भर में एक नई पहचान बनाई। विकास के प्रति समर्पण और देश के गरीब और आम लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव से जुड़े श्री मोदी के व्यापक अभियान ने उन्हें लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचा दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उन्होंने देश में विकास आधारित राजनीति की नई इबारत लिखी है। बीते 11 वर्षों में देश ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं, जिससे भारतवासियों के अंदर आत्मविश्वास की नई लहर चल रही है। आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार, बुनियादी ढांचे की मजबूती, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, मजबूत सुरक्षा से लेकर विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद से श्री मोदी के नेतृत्व की नई छाप दिखती है। नीतिगत निष्क्रियता की विरासत को पीछे छोड़ते हुए भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब श्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
पटना में कोविड के 2 संदिग्ध मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज कोविड-19 संक्रमण की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना के IGMS समेत विभिन्न अस्पतालों में लोगों को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज कुमार चौधरी ने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर बड़ी भंसाल चालू करने में आ रही बाधाओं को दूर कर लैंड कस्टम शीघ्र चालू किया जाएगा। श्री चौधरी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में कस्टम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नेपाल की तरफ कस्टम कार्यालय में टेस्टिंग लैब अभी तक नहीं लग पाया है, इस कारण से लैंड कस्टम का काम चालू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना के एलएन मिश्र संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा विश्व एकजुट है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में कृषि उद्योग सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को अपने सशस्त्र बलों की बहादुरी पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को कड़ा सबक मिला है।
आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगांव का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, उसका लोहा दुनिया ने माना है।
आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत का 7 अलग अलग बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल फ्रांस पहुंचा। श्री प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की यही सोच वे दुनिया के सामने रख रहे हैं।
आज तो हम लोग जरा मिलेंगे अभी थिंक टैंक के लोगों से, फिर भारतीय कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे, फिर मीडिया के लोगों से मिलेंगे, कल हम लोग संसद में जो इंडिया कॉकस के लोग हैं, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लोग हैं, उनसे मिलेंगे। तो कल काफी व्यवस्था है और हर जगह हम लोग यही विचार रखेंगे, इन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये विचार हम रखेंगे और हमें उम्मीद है कि भारत के पक्ष को दुनिया अप्रिशिएट करेगी।
इधर जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया में है। प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष सुंग इल जोंग से मुलाकात की। संजय झा ने कहा कि दक्षिण कोरिया ने आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। भाजपा नेता और राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री के पटना आगमन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। उन्होंने बताया कि पटना में होने वाले रोड शो के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है।
देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार पाटलिपुत्र की धरती पे आ रहे हैं, तो पटना के तमाम लोगों के अंदर एक उत्साह का वातावरण है अपने प्रिय नेता के आगमन पर, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। तो हम सब मिलकर इस पूरी तैयारी में लगे हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, सब लोग इसमें लगे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है पाटलिपुत्र की धरती पर जब उनका आगमन हो तो एक ऐतिहासिक क्षण पटना वासियों के लिए। अभी करीब 32 से 35 पॉइंट बनाने की है, प्रशासन के साथ हम लोग समन्वय कर रहे हैं।
आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद दिसंबर 1954 में 4 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान 4 ग्रेनेडियर्स ने हेमकरण भिखिविंड मार्ग पर चीमा गांव के पास एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। इस स्थान पर कब्जा करना समग्र रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। 8 सितंबर की रात पाकिस्तानी सेना ने ग्रेनेडियर्स के ठिकानों पर कई हमले किए, लेकिन इन हमलों में दुश्मन को खदेड़ दिया गया। 10 सितंबर की सुबह भीषण गोलाबारी के साथ साथ पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की एक रेजिमेंट ने बड़ा हमला किया। इस हमले से बटालियन के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। उसी सुबह 9 बजे तक दुश्मन के टैंक अग्रिम ठिकानों पर पहुंच गए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक रिकॉयललेस गन की कमान संभाल रहे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने तेजी से कार्रवाई की। वह भारी गोलाबारी के बीच अपनी बंदूक को जीप पर चढ़ाकर एक तरफ गए और बड़ी ही सटीकता के साथ उन्होंने दुश्मन के मुख्य टैंक को नष्ट कर दिया और टैंक को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपना स्थान बदला। मशीन गन और शेल फायर के निशाने पर होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से लगातार मुठभेड़ जारी रखी। इस गोलाबारी के बीच एक अन्य टैंक को नष्ट करने का प्रयास करते समय एक उच्च विस्फोटक शेल से वे घातक रूप से घायल हो गए। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की निडरता और दृढ़ साहस ने उनके साथियों को प्रेरित किया और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राज्य के विभिन्न भागों में प्री मानसून वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जमुई, बांका और भागलपुर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के कुछ भागों एवं शेष जिलों के एक या दो स्थानों में वर्षा की संभावना है। मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा की चेतावनी की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों एवं दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में देखी जा सकती है। राज्य के जमुई, बांका और भागलपुर जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंक के आंकड़ों को दी खुली चेतावनी। कहा, भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करने वाले को करारा जवाब मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा, आम लोगों की परेशानी को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर लैंड कस्टम जल्द चालू किया जाएगा। पटना में कोरोना के संदिग्ध मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राज्य सरकार की लोगों से अपील, घबराएं नहीं। और राज्य में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।